समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। ये विचार थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के, जिनकी आज पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 का ही वो दिन था जब देश को हमेशा सत्य, अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाने वाले महापुरुष महात्मा गांधी को मृत्यु हिंसा द्वारा प्राप्त हुई। वैसे बलिदान दिवस भारत में उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी मनाया जाता है जो भारत की आजादी, कल्याण और प्रगति के लिए लड़े और अपने प्राणों की बलि दे दी। भारत विश्व के उन 15 देशों में शामिल है जहां हर वर्ष अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो इसी प्रारंभिक जानकारी के साथ बृहस्पतिवार के एक नए दिन की एक नई सुबह में आइए शुरू करें समाचार मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जिसमें होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर का नमस्कार और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं वीसी प्रमोद। नमस्कार प्रमोद।
नमस्कार रवि, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग फॉर यू अ फॉरएवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग टू यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, Metro City updates, as well as some historical information related to this day, that is the 30th of January. And as Ravi rightly said, the nation is paying homage to Mahatma Gandhi on his 77th death anniversary and also Martyrs' Day ceremony today. On this occasion, a Sarva Dharma Prarthana will be held at the Gandhi Samadhi, Rajghat in New Delhi this morning. But we must begin with the headlines first.
Ji, bilkul. संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान सरकार सभी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श करेगी और सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए दलों से सहयोग की अपेक्षा करेगी। बजट सत्र कल से शुरू होगा।
That's right. The government has approved the National Critical Mineral Mission with an outlay of more than 34,000 crore rupees. The decision has been taken to build a resilient value chain for critical mineral resources essential for promoting green technologies. Briefing media in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav highlighted the importance of critical minerals for the development of the economy.
क्रिटिकल मिनरल्स इसलिए जरूरी है कि आज हमारी एंटायर इकोनॉमी में एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी है, सोलर पार्क हो, विंड टर्बाइन हो, बैटरीज हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, मोटर्स हो, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स एक नियायती तौर पर लगे। हमारी जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज जो आज ग्रो हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग बहुत होता है।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के ग्वांतनामो बे में अमेरिकी नौसेना बेस पर 30,000 लोगों की क्षमता के प्रवासी हिरासत केंद्र बनाने की घोषणा की है। ये नया केंद्र मौजूदा उच्च सुरक्षा जेल से अलग होगा और इसमें अवैध रूप से गंभीर अपराध वाले प्रवासियों को रखा जाएगा। आवर्जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन केंद्र मौजूदा स्थल का विस्तार करेगा और इसमें समुद्र में पकड़े गए अप्रवासियों को रखा जाएगा। इस बीच क्यूबा की सरकार ने इस कदम की आलोचना की है और इसे अवैध तथा अमानवीय बताया है। ग्वांटानामो बे काफी समय से विवादास्पद रहा है और यहां के नजरबंद लोगों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की खबरें आती रही हैं।
Democratic U.S. lawmaker Ro Khanna has announced that Republican colleague Rich McCormick will join him as the co-chair of the bipartisan Congressional Caucus on India, replacing Mike Walls, who is now the National Security Advisor to President Donald Trump. The India Caucus is committed to strengthening the relationship between the U.S. and India. It grew to a record number of 145 members in the previous 118th Congress with the joining of 35 new members.
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक कल प्रयागराज में संगम पर हुई भगदड़ की घटना के बाद आज महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए प्रयागराज जाएंगे। कल भगदड़ की घटना में 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी और 60 घायल हो गए थे। घायलों का स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को घटनास्थल का दौरा कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। वे हालात का जायजा लेंगे और मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। यह घटना कल संगम के पास अखाड़ा मार्ग पर हुई, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए आए थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घटना की गहराई से जांच करने के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का भी गठन किया है। भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए भी समिति अपना सुझाव देगी। आयोग 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। पुलिस भी मामले की अलग से जांच करेगी और हादसे के कारणों की पड़ताल करेगी। सरकार ने कहा है कि महाकुंभ के दौरान भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधन को और मजबूत किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
In sports news, in the Men's Hockey India League HIL, Tamil Nadu Dragons and Surma Hockey Club have secured their semi-final spots. We have a report.
On the 29th of January at the Hero Hockey India League, 2 matches were played between JSW Surma and Sirachi Rar Bengal Tigers and between Tamil Nadu Dragons and UP Rudras at the Birsa Munda Stadium, Rourkela. In the first match between Sirachi Rar Bengal Tigers and JSW Surma, it was a very tough match with both the teams sharing one goal each at the end of full time. This led to the shootout, which proved to be a one-sided affair. JSW Surma proved too good for the Bengal Tigers. They won by a 3-0 margin. In the second match of the evening, UP Rudras got the better of Tamil Nadu Dragons with a 3-2 margin in the shootout after they were locked 2-2 at full time. Despite the loss, Tamil Nadu Dragons made it to the semi-finals. On the 31st of January, in the semi-finals, the first semi-final will be played between Sirachi Rar Bengal Tigers and Tamil Nadu Dragons, and the second semi-final will be played between JSW Surma and Hyderabad Tufan. This is D. Andrew reporting for Akashwani News.
In the 30th National Games 2025, the competition is heating up with electrifying performances across multiple disciplines in different cities of Uttarakhand. Karnataka made a stunning start, clinching 5 gold medals. We have more from our correspondent.
The 38th National Games witnessed an action-packed day with Karnataka making a spectacular start, clinching 5 gold medals and setting 2 new national records at Dr. Shyama Prasad Mukherjee Swimming Complex, Haldwani. In the women's 100-meter freestyle event, Dinidhi from Karnataka displayed an exceptional performance, securing the gold medal with a record-breaking time of 2 minutes 3.24 seconds. In the men's 200 freestyle category, Srihari Natraj claimed gold with an impressive time of 1 minute 50.57 seconds. In the 100-meter butterfly event, Benedict Rohit from Tamil Nadu dominated the men's category to win gold, while Karnataka's Dinidhi added another feather to her cap by securing her second gold medal of the day in the women's category. As for the medal tally, Karnataka leads the standing with 5 gold and 2 silver medals, while Manipur closely follows in second place. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
भारत के डोम राजू गुकेश ने नीदरलैंड्स के विज ऑन जी में 2025 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में जीत का अपना जलवा जारी रखा है। उन्होंने मास्टर्स कैटेगरी में अपनी बढ़त बनाए रखते हुए कल रात नीदरलैंड्स के ग्रैंड मास्टर मैक्स वार मेरडेम को खेल के 10वें दौर में हरा दिया। सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने के बाद गुकेश का ये पहला टूर्नामेंट है। इससे पहले मंगलवार को स्पेनिश ओपनिंग में उन्होंने लियोन ल्यूक मेनजोनका को 9वें दौर में पराजित किया। वहीं टूर्नामेंट में रमेश बाबू प्रज्ञानानंद और नॉरिरबेक अब्दू सत्तोरोव के अंक कम हो गए। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रहे हैं वीसी प्रमोद।
थैंक यू रवि। आई विल स्टार्ट विद चेन्नई। द इंडियन कोस्ट गार्ड सीज्ड 60 लाख वर्थ कैनबिस एट द इंडिया श्रीलंका इंटरनेशनल मैरिटाइम बॉर्डर लाइन। एन एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट इन द मॉर्निंग ऑफ द 29th, रिस्पॉन्डिंग टू एन इंटेलिजेंस इनपुट। एन एयर कुशन व्हीकल वॉज डिप्लॉयड टू सर्च फॉर कॉन्ट्रोबैंड। During an extensive search, the vehicle spotted a few packages in the first island near the IMBL. The packets have been identified as cannabis and were weighing around 53.6 kilograms, which is worth over 60 lakhs. They were later handed over to the Customs Department for further course of action. INS Parandu leads the 76th Republic Day bike rally to promote safety and survival at sea. The bike rally was also able to raise awareness about sea safety and survival among the fishing communities along the southern Tamil Nadu coast. The two-day rally, commencing from Ramanathapuram on the 26th, covered over 500 kilometers, with the team conducting awareness campaigns at key fishing harbors. The Navy's Putreach activities highlighted the practical guidance for safer fishing practices while collaborating with the coastal population. Moving on to Bengaluru, the National Thermal Power Corporation will install a CO2 battery-based closed Brayton cycle energy storage system with 160 megawatt energy capacity in its Kudugi unit in Karnataka. This will increase the renewable power generation capacity in the country. The R&D wing of the NTPC, known as Netra, is installing the system in collaboration with Triveni Turbine Limited and Energy Dome, Italy. CO2 battery-based system works on specialized electromechanical turbo machinery with CO2 as the process fluid. The CO2 battery has a very long lifetime of over 25 years and has no need for minerals such as lithium and cobalt. It is topography agnostic and has minimal performance degradation. With the successful demonstration of the technology, NTPC can realize its decarbonization goals earlier than anticipated and ensure round-the-clock power delivery through domestic sources. And now moving on to Hyderabad, the Election Commission of India, ECI, has announced the schedule for the biennial election to Telangana State Legislative Council from Medak, Nizamabad, Adilabad, Karimnagar graduates and teachers constituencies and Warangal, Khammam, Nalgonda teachers constituency. According to the official notification, the election process will commence on the 3rd of next month. The last date for filing of nominations is the 10th, followed by scrutiny on the 11th of this month. The last date for withdrawal of nomination is the 13th of February. Polling will be conducted on the 27th of February, Thursday, from 0800 hours to 1600 hours. The Election Commission has urged all eligible voters to participate in the democratic process. So, Ravi, those were the news, the Metro News from Chennai, Bangalore, Hyderabad. What do you have for us from Delhi, Mumbai and Kolkata?
भाई प्रमोद, मेरे पास भी बहुत से समाचार हैं इन सभी मेट्रोज के, तो शुरुआत दिल्ली से कर लेते हैं
जी।
राजधानी के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में चल रहे भारत पर्व 2025 महोत्सव में लोग गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस वर्ष ये पर्व देखो अपना देश की थीम पर आधारित है, जिसमें 34 राज्यों के पर्यटन पवेलियन और 24 मंत्रालयों द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा देशभर के अलग अलग खानपान के लगभग 60 स्टॉल भी इस उत्सव में लगाए गए हैं। आगंतुक दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक इस महोत्सव का आनंद ले सकते हैं। 6 दिवसीय इस पर्व का समापन कल 31 जनवरी को होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने नमो भारत रेल के यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा टिकट में 10% छूट देने की घोषणा की है। यात्रियों को यह छूट नमो भारत मोबाइल ऐप से खरीदे गए टिकट और एनसीएमसी कार्ड का उपयोग करने पर मिलेगी। एनसीआरटीसी ने बताया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए लॉयल्टी प्वाइंट कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत यात्रियों को अनेक लाभ दिए जा रहे हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में अगले महीने से 38वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर हरियाणा पर्यटन निगम ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय अवधि में तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। इस बार मेले में उड़ीसा और मध्य प्रदेश थीम स्टेट होंगे और बिम्स्टेक, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों की कंपनियां अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सूरज कुंड मेला पूर्ण रूप से डिजिटलाइज रहेगा। मेले से जुड़े हर पहलू की जानकारी सूरजकुंडमेला.co.in पर उपलब्ध रहेगी। मेले का आयोजन 7 से 23 फरवरी के बीच सूरज कुंड परिसर में किया जाएगा। चलते हैं महाराष्ट्र
जी,
मुंबई की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष की प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें शामिल बीमारियों, दी गई राशि और अस्पतालों की संबद्धता के मानदंडों पर निर्णय लेने के साथ साथ अन्य पहलू भी शामिल हैं। समिति वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत शामिल 20 बीमारियों के साथ साथ अन्य सरकारी योजनाओं में शामिल बीमारियों की समीक्षा करेगी। ये नई बीमारियों को शामिल करने, आवश्यक कागजी कार्रवाई और अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में सिफारिशें भी करेगा। नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में आज 30 जनवरी से 14 फरवरी तक कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों की पहचान करने का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए कुल 181 टीमें बनाई गई हैं, जो 98,000 से ज्यादा घरों में जाकर 1,00,000 से ज्यादा मरीजों की जांच करेंगी, साथ ही कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता भी बढ़ाएंगी। प्रत्येक टीम, जिसमें एक पुरुष और एक महिला कर्मचारी शामिल है, प्रत्येक दिन 30 घरों का दौरा करेगी और प्रासंगिक जानकारी एकत्र करेगी। कुष्ठ रोग के लक्षण दिखाने वालों को आगे की जांच के लिए चिकित्सा अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में छोटे बाजार परिसर बनाने की योजना बना रही है। विभिन्न स्वयं सहायता समूह इन परिसरों के प्रबंधन की देखभाल करेंगे। पहले चरण में इसके लिए 7 जिलों का चयन किया जाएगा। सरकार पहले से ही हावड़ा जिले के उलुबेरिया सब डिवीजन में एक मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रही है। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और प्रमोद के साथ, और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की धूप रहने की संभावना है। आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में धुंध रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता की अगर बात करें तो वहां आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। प्रमोद,
दैट्स राइट। आपने नॉर्थ की बात कही तो मैं साउथ पे चले जाता हूँ।
जी बिल्कुल।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग एंड मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 21 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 31 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ट and which would occur in the early mornings. The minimum temperature was 16 degrees Celsius and the maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 19 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और आइए अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को, जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। लेकिन प्रमोद, उससे पहले हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आज विश्व कुष्ठ रोग दिवस है, जो प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है।
That's right.
ये दिवस जल्द से जल्द रोग उन्मूलन या निवारण के लिए प्रयास बढ़ाने और प्रतिबद्धता को नवीकृत करने का अवसर प्रदान करता है। कुष्ठ रोग को हेंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। प्रमोद
जी,
ब्राजील, इंडोनेशिया और भारत इस रोग के उच्च बोझ वाले देश हैं, और कुष्ठ रोग उपचार योग्य है और शुरुआती अवस्था में उपचार विकलांगता को रोक सकता है। और अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को।
दैट्स राइट। In 1790, the world's first lifeboat was tested in the waters by inventor Henry Greathead.
1903 में आज के दिन लॉर्ड कर्जन ने मेटकॉफ हॉल में इंपीरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। 1933 में एडोल्फ हिटलर ने आधिकारिक रूप से जर्मनी के चांसलर की कमान संभाली।
रवि, आपने एडोल्फ हिटलर की बात की जिन्होंने बहुत लोगों को रुलाया
जी,
लेकिन एक आदमी थे जिन्होंने बहुत लोगों को हंसाया
जी,
चार्ली चैपलिन
जी, जी।
उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है,
बताइए ना।
1931, चार्ली चैपलिन आइकॉनिक साइलेंट कॉमेडी फिल्म सिटी लाइट्स डायरेक्टेड एंड स्टारिंग चैपलिन अलोंगसाइड वर्जीनिया चेरल प्रीमियर्ड। एंड इन 1933 एडोल्फ हिटलर वाज नेम्ड चांसलर ऑफ जर्मनी, as rightly said by Ravi. Yeah. And in 1945, the German ocean liner William Gustloff was sunk by a Soviet submarine, resulting in the biggest maritime disaster in history and the deaths of 9,000 people.
Ji. 1943 mein aaj ke din Stalingrad ke paas Soviet faujon se German sena jo hai haar gayi thi. 1949 mein Ratri Air Mela seva ki shuruaat hui. 1957 mein aaj ke din Rashtra Sangh ne Dakshin Afrika ko apni nasl bhedi neeti par punarvichar karne ke liye kaha.
In 1959, uranium metal project started producing uranium at Trombay in Mumbai. And in 1969, the celebrated English rock band The Beatles performed their last live gig, a 42-minute concert on the roof of the Apple Corp headquarters in London for a limited audience. And in 1999, Gopinath Bordoloi was awarded the highest civilian award, the Bharat Ratna. And in
2001 में आज के दिन गुजरात में आए भूकंप के बाद महामारी की आशंका को रोकने के लिए पुनर्वास के और उपाय किए गए और भूकंप में मरने वालों की संख्या उस समय 30,000 तक पहुंच गई थी।
That's right. In 2020, the World Health Organization declared COVID-19 a public health emergency of international concern.
और अब समय हो गया है कुछ महानुभावों के पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, जिनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को और निधन आज ही के दिन यानी 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए उन्हें पूरे विश्व में, यानी कि कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। साबरमती आश्रम से उनका अटूट रिश्ता था। इस आश्रम से महात्मा गांधी आजीवन जुड़े रहे, इसीलिए उन्हें साबरमती का संत की उपाधि भी मिली। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक है प्रमोद। मूल रचना सन 1909 में गुजराती में थी। ये लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखा। ये इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, जिसे भारत में अंग्रेजों ने ये कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया था कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। इस पर गांधी जी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी निकाला ताकि ये बताया जा सके कि इसकी सामग्री राजद्रोहात्मक नहीं है। और आखिरकार 21 दिसंबर 1938 को इससे प्रतिबंध हटा लिया गया। हिंद स्वराज का हिंदी और संस्कृत सहित कई भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। और फिलहाल सुन लेते हैं राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित उन्हीं का एक और बहुत ही पसंदीदा भजन।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम।
टुडे इज ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ जॉन बैरी, हु डाइड ऑन द 30th of January 2011 फॉलोइंग अ हार्ट अटैक, एंड विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड with the golden age of James Bond. Ravi, मुझे पता है आपको James Bond के movies बहुत पसंद है।
बहुत ज़्यादा, और college time पे तो बहुत ज़्यादा देखे।
Exactly. उसका जो theme song है, that was composed by John Barry.
अच्छा।
So let's listen to the theme song of James Bond.
जी।
जी।
तो वो म्यूजिक था जिससे प्रभावित होकर हम कॉलेज के दिनों में इनकी मूवी देखने जाया
करते थे। आपने कभी बंक तो नहीं किया ना?
नहीं नहीं बंक चले पुण्यतिथियों में अगला नाम है पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भारत के सरल भाषा के ख्याति प्राप्त कवि लेखक और पत्रकार का जिनकी रचनाओं ने अपने समय में गजब कर रखा था प्रमोद और आज तक कर रखा है। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता से हमारे श्रोता समझ जाएंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पर पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध कवि एवं रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जिनका जन्म हुआ 4 अप्रैल 1889 बाबई मध्य प्रदेश में, लेकिन इन्होंने इस संसार से विदा ली 30 जनवरी 1968 को। माखनलाल चतुर्वेदी ने हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया। ये कर्मवीर राष्ट्रीय दैनिक के संपादक थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा है। राष्ट्रीयता माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का क्लेवर है तथा रहस्यात्मक प्रेम उनकी आत्मा है। उनकी मुख्य रचनाओं में शामिल हैं कृष्णार्जुन युद्ध, हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणु लोगुंजे धरा, अमीर इरादे, गरीब इरादे इत्यादि।
That's right. And moving on to birth anniversaries, today is the birth anniversary of Douglas Engelbart, and he invented the computer mouse in 1964. Engelbart was a computer visionary who alongside designed the online system, NLS, which was a collaborative computing system. Engelbart developed the mouse in the early 60s at the Stanford Research Institute.
और अब अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं जनरल के वी कृष्ण राव के बारे में जिनका जन्म हुआ 16 जुलाई 1923 को और निधन हुआ 30 जनवरी 2016 को। भूतपूर्व भारतीय थल सेना प्रमुख थे आप। इन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। के वी कृष्ण राव 1989 से 1990 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी थे जब राज्य में आतंकवाद अपने चरम पर था। के वी कृष्ण राव ने 1947 में बंटवारे से पहले पूर्वी और पश्चिमी पंजाब दोनों जगहों पर सेवा दी जिस दौरान वहां हिंसा का माहौल था। वे भारतीय सेना के 14वें प्रमुख थे और सेना में उन्होंने 4 दशक से ज्यादा समय तक अपनी सेवाएं दी।
हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम।
Today is also the birthday of Priyadarshan, famous Indian producer, director, editor, and of course a very wonderful screenwriter also. Over a career span of nearly 3 decades, Priyadarshan has directed a portfolio of over 90 films. And one of his famous films is Chitram, which was a super duper hit. We have a song from that film. Let's listen to it.
പ്പുറത്തു നിന്നു പുന്നാരം ചൊല്ലി നീ വന്നു പാടം പൂത്ത കാലം പാടാമെന്നു നീയും।
और प्रमोद, अब कार्यक्रम का वो चरण आ गया है जिसमें हमें लेनी है अपने श्रोताओं से विदा। लेकिन चलते चलते आज का विचार कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका संयम है और सबसे बड़ी कमजोरी उसका गुस्सा। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और वीसी प्रमोद को आज सवेरे कार्यक्रम यही संपन्न करने के।
That's right, Stay tuned in for coming up next, Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.